हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं आज की श्रीमद् भगवत क्लास में। और नया स्कंद शुरू हुआ है कई लोगों के लिए, जो लोग संडे संडे आते हैं। यह है सप्तम स्कंद, सातवां स्कंद, उसका जो है आज हम लोग पहले अध्याय का 20वां श्लोक बोर्ड पर लिखा है। अब सब लोग हमारे से बोलने का प्रयास कीजिए। कथम तस्मिं भगवते दुर्वग्राहं धामनि पश्यतां सर्वलोकानां लयं इष्यतु लभ्यतु अञ्जसा। कथं तस्मिन् भगवते दुर्वग्राहिं धामनि पश्यतां सर्वलोकानां लयमितु रञ्जसा। कथं तस्मिन् भगवते दुर्वग्राहिं धामनि पश्यतां सर्वलोकानां लयमितु रञ्जसा। कथं तस्मिन् भगवते दुर्वग्राहिं धामनि पश्यतां सर्वलोकानां लयमितु रञ्जसा। शब्दार्थ दोहराइए। कथम, कैसे, तस्मिन् उसमें, भगवते भगवान में, दुर्वग्राह प्राप्त करने में कठिन, धामनी जिसका स्वभाव, पश्यताम देखते देखते, सर्वलोकानाम सारे लोगों के, लयम युतो लीन हो गए, अंजसा सरलता से। अनुवाद एवं तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। यह कैसे संभव हो पाया कि शिशुपाल तथा दंत वक्र अनेक महापुरुषों की उपस्थिति में उन भगवान के शरीर में सरलता से प्रविष्ट हो सके, जिन भगवान की प्रकृति को प्राप्त कर पाना इतना कठिन है। तात्पर्य, शिशुपाल तथा दंतवक्र पूर्व जन्म में वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे। उनका अंतिम लक्ष्य कृष्ण के शरीर में लीन होना नहीं था। वे कुछ काल तक लीन रहे, किंतु बाद में उन्हें प्रभु के लोक में रहने तथा उन्हीं के समान शरीर प्राप्त करने, अर्थात सारूप्य तथा सालोक्य मुक्ति प्राप्त करने का अवसर मिला। शास्त्र साक्षी है कि यदि कोई परमेश्वर की निंदा करता है तो उसको अनेक ब्राह्मण वध करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा लाखों वर्षों तक नारकीय जीवन बिताने का दंड दिया जाता है। किंतु शिशुपाल को नारकीय जीवन में प्रवेश नहीं करना पड़ा, वह तो तुरंत ही सरलता से सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। शिशुपाल को ऐसा सुअवसर दिया जाना कोरी कथा नहीं है। वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने देखा, अतएव साक्ष्य की कमी नहीं है। लेकिन यह हुआ कैसे? महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चकित थे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा है, और श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता और अन्य पुराण, इन सभी में हम जानते हैं और देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्रश्न किए गए हैं और भगवान द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा उसके उत्तर दिए गए हैं। और ये प्रश्न करने वाले लोग ऐसा नहीं है कि अज्ञानी थे या संशय में थे, ये सेल्फ रियलाइज लोग थे। लेकिन क्योंकि कलयुग शुरू होने वाला था, इसलिए इस प्रकार की चीज़ों को रचा गया, सो दैट कि हम लोगों को ग्रंथ प्राप्त हो सकें जिसमें हमारी जिज्ञासाएं, हमारे संशयों का भी समाधान हो सके। इसलिए सभी ग्रंथों में हम देखते हैं अर्जुन के द्वारा कृष्ण को प्रश्न किए गए और फिर जवाब दिए गए, और वो सब जिज्ञासाएं जिस प्रकार की कि एक व्यक्ति के दिमाग में होती है। यहां पर परीक्षित महाराज भी सुखदेव गोस्वामी से कथा सुन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रश्न भी कर रहे हैं और उनका निवारण भी हो रहा है। यहां तक कि महाभारत इत्यादि ग्रंथों को भी देखें, जब हम पढ़ते हैं व्यासदेव जी के लिखे हुए, तो उसमें भी हर जगह प्रश्न हैं और उनके उत्तर दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार इन प्रश्न और उत्तर से होता क्या है कि हम सबकी जो जिज्ञासाएं हैं किसी कथा को समझने के लिए, उन जिज्ञासों का समाधान होता रहता है और व्यक्ति की, उस व्यक्ति का जो ज्ञान का लेवल है या जो उसका फेथ है, वो भगवान में बढ़ता रहता है। अगर कहीं पर कुछ रुकावट आ जाती है कुछ संशयों को लेकर, जिसके उसके प्रश्न के जवाब नहीं मिलते, तो फिर उसका फेथ उस मात्रा में नहीं बढ़ता जिस मात्रा में बढ़ना चाहिए। तो इस तरह एक बार हम किताब पढ़ रहे थे, मैं भूल चुका हूँ कि वो कौन सी किताब थी और किस भक्त की कहानी थी। वो मुस्लिम बैकग्राउंड से थे और एक बार कहीं थे तो कहीं जो हरे कृष्णा डिवोटीज होते हैं विदेशों में, वो पैम्फलेट्स वगैरह बांटते रहते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी लिखे होते हैं, उसके आंसर्स भी देते हैं और वो सब बांटते हैं। तो कई बार लोग उसको पढ़ते हैं और फेंक देते हैं। कई लोगों को लगता है फेंकना नहीं चाहिए, ये होगा वो होगा, लेकिन कई बार ये उड़कर ऐसे लोगों के पास पहुँच जाते हैं जिनको उसकी आवश्यकता ज़्यादा है। तो एक व्यक्ति ने पढ़ा उसको और उसमें जो कुछ प्रश्न लिखे थे वो प्रश्न वही थे जिनका प्रश्नों का उत्तर वो बचपन से ढूंढता था। ठीक है, नाम मत बोलो, दिक्कत है। हाँ, तो ऐरावत प्रभु थे, दीक्षा का नाम उनका ऐसा कुछ है, पहले आरिफ थे। धन्यवाद। तो इनको वो कागज मिला और फिर उन प्रश्नों को उन्होंने पढ़ा, तो ये प्रश्न वही थे जो इनकी जिज्ञासा वो करते थे जीवन भर। और उन्हें पता था कि जो ग्रंथ मैंने पढ़े हैं उन ग्रंथों में उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है, अगर मिलता भी है तो बड़ा आंशिक रूप में, डिस्क्रिप्शंस नहीं है। तो उस कागज को लेकर वो बड़े खुश हुए और उस एड्रेस पे गए और खटखटाने की कोशिश करी। देखने में लंबे चौड़े लगते थे और कोई व्यक्ति अगर आपको मालूम है दाढ़ी वाड़ी के साथ हो तो बड़ा है ना, उसको देख के कोई भी डर जाता था। तो दरवाजा खटखटाया तो इस्कॉन टेम्पल डिवोटीज ने कहा कि भाई पता नहीं कौन है, रात को खोला ही नहीं दरवाजा, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई शराबी कबाबी पहुंच जाता था वहां पर और डिस्टर्ब करता था हरे कृष्णा डिवोटीज को। तो रात भर वहीं पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद जब सुबह हुई तो पूछा, पता चला, फिर उसने प्रश्न किए, आगे कहानी कुछ ऐसा। फिर बाद में वो उसने मंदिर ज्वाइन कर लिया, मतलब भगवान का भक्त बन गया। अच्छा, तो प्रश्न उत्तर जो है हमारा फेथ बढ़ाते हैं, और अगर किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा तो क्या है, वो संशय में ही रहेगा और फिर उसका फेथ उतनी मात्रा में उतनी अच्छी डिग्री से नहीं बढ़ सकता, इसलिए प्रश्न करने चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न किए गए वो सब हमारी, क्योंकि कलयुग में जो है बताया गया कि मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रता, लोगों की बुद्धि भी मंद होगी, भाग्य भी मंद होगा और आलसी बहुत होंगे। तो इसलिए कई बार हम लोग प्रश्नों के प्रश्न पूछते हैं लोगों से तो हाथ नहीं खड़े होते, है ना, लोगों को लगा ठीक है मैं क्या पूछूं, पड़ोसी पूछ लेगा है ना, वो भी क्यों पूछे, कोई और पूछ लेगा, कोई और कर लेगा, कोई और कर ले, कोई नहीं करता इसलिए कई बार। तो इसलिए जो है इन ग्रंथों में पहले प्रश्न पूछ लिए गए और उनके उत्तर हमें प्राप्त हो रहे हैं बहुत आसानी से। तो आज का जो प्रश्न है ये पिछले दो तीन प्रश्नों से उसमें आ रहा है कि पूछा जा रहा है कि यद्यपि शिशुपाल तथा दंतवक्र, जानते हैं आप लोगों को शिशुपाल और दंतवक्र दोनों ही भगवान विष्णु के की बारंबार निंदा करते थे तो भी वे पूर्ण स्वस्थ रहे, इसे पिछले श्लोक की बात कर रहे हैं, ना तो उनकी जीभों पर ही श्वेत कुष्ठ हुआ ना वे नारकीय जीवन के गहन अंधकार में प्रविष्ट हुए, हम सचमुच इससे अत्यधिक चकित हैं। क्योंकि कई बार क्या होता था, जो वैष्णवों की निंदा करता था या भगवान की निंदा करता था तो कई बार ये कुष्ठ रोगी बन जाता था। चैतन्य में हम कई प्रसंग पढ़ते हैं जिसमें कई बार किसी ने कुछ बोला वैष्णव को या भगवान की निंदा करी तो पूरा कुष्ठ रोगी हो जाता था वो, और उसको लेप्रेसी हो जाती थी और लोग फिर वो पूरा बेचारा परेशान दुखी और दर्द के बारे कराता रहता था जब तक उसी वैष्णव से जाकर माफी ना मांगे। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि एक तो उनको कुछ हुआ नहीं, इतनी निंदा करते थे भगवान की, और फिर आज के श्लोक में कह रहे हैं कि यह कैसे संभव हो पाया कि शिशुपाल तथा दंतवक्र अनेक महापुरुषों की उपस्थिति में उन भगवान के शरीर में सरलता से प्रविष्ट हो सके जिन भगवान की प्रकृति को प्राप्त कर पाना इतना कठिन है। नेचुरली प्रश्न तो उठेगा ना कि जिन भगवान को दर्शन करना या जिस भगवान के द्वारा मुक्ति प्राप्त करना जितने भी अध्यात्मवादी हैं, चाहे कर्मकांडी हों, चाहे कर्मयोगी हों, ज्ञानवादी हों, योग के द्वारा, आसन के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाह रहे हो, ध्यान के द्वारा, इन लोगों को भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद कहीं जाकर भगवान के चरणों का दर्शन होता है। और यहां पर ऐसे लोग जो जीवन भर भगवान को गालियां देते रहे, उनकी निंदा करते रहे, तुरंत मरने के पश्चात भगवान के शरीर में, कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गए, ये तो बहुत अचंभा लगा था, और वो भी महापुरुषों के सामने। तो ये जिज्ञासा हुई उनको। तो बता रहे हैं कि ये जो दंत वक्र, और क्योंकि कई बार जैसे हम लोग अपने जीवन से भी ले इसके एग्जाम्पल को, श्री राधा राधे करण भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, तो ये प्रसंग लगभग इस प्रकार है जैसे कि हम लोग कई बार अपने स्कूल में अपने टेस्ट देते हैं और खूब मेहनत करते हैं, और अपनी मेहनत के अकॉर्डिंगली हम लोग अपने जो है पेपर लिख कर आते हैं, और बाद में उसका रिजल्ट आता है साल के अंत में, और फिर हम लोग रिपोर्ट कार्ड्स देखते हैं, तो रिपोर्ट कार्ड्स में कुछ लोग बहुत खुश होते हैं और कुछ ज़्यादा खुश होते हैं, और कई बार लोग बहुत दुखी भी होते हैं। मेहनत सबने की है, और कई बार कुछ लोगों को कुछ होता ही नहीं है क्योंकि उन्हें पता था क्या आना है। कुछ करके आएंगे तो कुछ आएगा ना। तो जो बहुत खुश होते हैं उनको लगता है कि अरे मैंने जितना किया था और जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, और कुछ को लगता है कि ठीक है मैंने किया था जितना किया था उतने आ गए, और कुछ को लगता है जितना मैं करके आया था उतने नहीं आए, ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो क्या करते हैं फिर ऐसे लोग, रीचेक, है ना, कुछ फीस भरकर रीचेक करवाते हैं पेपर, और बाद में जब रीचेकिंग होती है उनके सामने पेपर रखा जाता है और दिखाया जाता है, देखिए यहाँ आपने गड़बड़ की थी, यहाँ गलतियाँ की थी, ये किया था और इस वजह से इतने, कहते हैं ओके मैं समझा ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, कहते चलो वापिस जाओ। तो ऐसे ही भगवान की योजनाओं के अनुसार जो हम सब लोग टेस्ट देते हैं अपने जीवन में वो भी ऐसे ही होता है कि नहीं। कुछ लोग पाप कर्मों में लगे हैं तो उन्हें पता हमारा कुछ होना ही नहीं है, है ना, उन्होंने विद्रोह कर रखा है भगवान की योजनाओं से, भगवान के नियमों से, तो सुबह से लेकर शाम तक उनको पता है कि हमारा रिजल्ट क्या होना है, है ना, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में लोग कर रहे हैं तो उनको इस बात की सेटिस्फेक्शन होती है, मैं अकेला नरक नहीं जाऊंगा। किनके साथ जाऊंगा, सबके साथ जाऊंगा। जैसे एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा भक्त से, अरे भाई कोई शराब पीता तो क्या होगा, कहता इस वाले नरक में जाएगा, कहता कोई मीट खाता है तो इस वाले में जाएगा, वो भी जाएगा, सब जाएंगे, कहता हाँ, कहता वो हमारा दोस्त है वो पीता है, कहता वो जाएगा, कहता वो है वो दोस्त हमारा वो भी जाएगा, कहता तो ठीक है फिर मैं भी चला जाऊंगा, सब लोग वहां जा रहे हैं तो मैं अकेला जा रहा है क्या करूंगा। तो कई बार लोगों को संतुष्टि इसलिए मिलती है कि वो अकेला नहीं है पापी, जैसे क्लास में केवल एक फेल हो तो बड़ा परेशान हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा, लेकिन दो होंगे तो उसको सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं भी हूं और ये भी है। अगर किसी का एक का मकान टूट रहा है अधिक्रमण करने के अनुसार तो क्या करेगा, वो बहुत गुस्सा होगा, बहुत परेशान होगा। अगर 10 के टूट रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डर के ठीक है मेरा क्या, इनका भी तो जा रहा है। सुनने में आया था हमारे इधर मोती नगर में कहीं ऐसा हुआ था, किसी एक व्यक्ति का मकान टूटा, उसने दूसरे का कंप्लेन कर दी जिसने तोड़वाया, दूसरे ने कहा मेरा थोड़ी बनाया था, सबका बना है पूरे इलाके, तो कोर्ट ने सबके तोड़वा दिए। तो उनको बहुत रिलीफ मिला यहां पर, काफी संतुष्टि हुई, ठीक है ना। तो कई बार लोग इसलिए भी जो हैं पाप कर्म करते हैं कि ठीक है हम अकेले नहीं है, काफी लोग कर रहे हैं, अगर हम नरक जाएंगे तो ये सारे भी हमारे साथ ही जाएंगे, वहीं मिलेंगे सब। तो समाज में जो है इस प्रकार होते हैं, लेकिन कुछ बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, भगवान के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हैं, भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो उनकी गति अच्छी होती है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनका केस बिगड़ जाता है, जैसे वो रीचेक वाला सिस्टम भी होता है कि कुछ अच्छा करने का प्रयास किया, अच्छा उसके अकॉर्डिंगली था, शास्त्र के अकॉर्डिंगली, फिर भी उसको लगा अच्छा था, और कुछ पापी लोग बोलते थे या कुछ अच्छे लोग भी बोलते थे कि तुम तो बहुत अच्छे थे, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो कहते बात तो ठीक है, रीचेक करवाऊंगा। तो रीचेक करवाते हैं, है ना, कई बार गड़बड़ हो भी जाती है ना, एक आधा केस होता है, जैसे अजामिल के केस में, है ना, वो पूरा जीवन उसने पाप ही किया था, और अचानक पता चला धाम चला कि लोगों ने भाई ऐसे कैसे जा सकता है, रीचेक करो उसका पेपर। तो फिर रीचेक किया तो क्या हुआ, पता चला उसने क्या करा, जीवन भर तो पाप किए थे लेकिन अंत में अपने पुत्र का नाम पुकारा था, क्या नारायण नारायण। ऐसे नहीं, ये तो नारद जी का स्टाइल है, बट वो दूसरे स्टाइल में बोला था। इस प्रकार उसको जो है यमदूतों का और विष्णु दूतों का धर्म का संवाद सुनने को मिला, इससे उनको फायदा पहुंचा, और फिर वो दोबारा शरीर लेकर कहां गए, हरिद्वार चले गए। हमारे कई डिवोटीज हरिद्वार गए हैं, लेकिन इसलिए नहीं गए, वहां पर बुक पुस्तक वितरण करने के लिए गए। तो इस प्रकार कई बार रीचेक होते तो पता चलता कि हाँ गलती हुई। एक बार एक महिला थी, उसका कार एक्सीडेंट हो गया और उसको ले गए, तो उसका रिकॉर्ड देखा, उन्होंने रीचेक करवाया तो पता चला क्या था, अभी तो उम्र 25 साल बची हुई है इसकी। उसको बताया आपको तो ये उम्र ही नहीं थी, तो गलती से ले आया, 25 साल और अभी है आपके पास टाइम। तो उसने क्या किया, हॉस्पिटल में ही उसको लगा भी तो बड़ा सारा टाइम है मेरे पास, महिला की उम्र भी लगभग 55-60 थी, तो उसको लगा भी तो काफ़ी लंबा जीना है। तो उसने हेयर ड्रेसर को, पार्लर वालों को, है ना, सबको बुला लिया, और जो है कलर और ये सब शुरू कर दिया, मतलब जब तक ठीक होना तक पार्ट्स जुड़ने थे बॉडी के, तब तक उसने सब कुछ ठीक कर लिया। ठीक होके भी बाहर ही निकली थी, फिर एक्सीडेंट हो गया उसका, ये हमके दूध फिर ले गया उसको। तो उसने कहा अभी तो मेरे पास टाइम था, कहते सॉरी हमने आपको पहचाना ही नहीं, गलती हो गई। तो कई बार गलती हो जाती है, लेकिन अब वो माफी नहीं दी गई। इस केस में लग रहा है दंत वक्र और शिशुपाल जो केवल भगवान को गालियां देते थे, मृत्यु के पश्चात भगवान के द्वारा मरे और भगवान के शरीर में प्रवेश कर गए। तो ये प्रश्न है कि भाई ऐसा क्यों, जिस गति को प्राप्त करने के लिए लोग जीवन भर खूब तपस्या करते हैं, खूब त्याग करते हैं, इंद्र तृप्ति का तर्पण बंद कर देते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, उन सारे प्रलोभनों को छोड़ देते हैं जिसमें आम समाज लगा हुआ है, कठोर तपस्या कर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों को भी जब भगवान का धाम या गति प्राप्त होना इतना मुश्किल है, तो ऐसे दंतवक्र और शिशुपाल जैसे लोगों को क्यों मिला, तो ये प्रश्न पूछा गया। तो कई लोग तो जानते हैं आंसर, वो ये था क्या कि भगवान को जब कभी इच्छा होती है कुछ लड़ाई करने की, है ना, कभी ना कभी भगवान को भी इच्छा होती है। भगवान को बताया गया है स्वराट, स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जब भगवान को कभी इच्छा होती है तो भगवान अपने ही भक्तों के साथ ये लीला करना चाहते हैं। और फिर हम जानते हैं इस प्रसंग को कि चार कुमार जो कि निर्विशेष का ब्रह्म का जो है ध्यान करते थे, अचानक उनकी नासिका के द्वारा भगवान विष्णु के चरणों पर पड़ी हुई तुलसी की सुगंध पहुंच गई, उनको खूब सुंदर लगी, और कहां से आ रही उस तरफ निकल गए, उधर देखा वैकुंठ की ओर चले, और वहां के सौंदर्य को देखकर वे हैरान थे। एक गेट, दो गेट, तीन गेट, सारे गेट्स को पास किया, आखिरी जो सातवां गेट था उस गेट के बाहर जय और विजय नाम के विष्णुदूत खड़े थे, और उन्होंने 5 वर्ष की उम्र के लगभग चारों कुमारों को रोक दिया गेट पर, है ना। उन्होंने जो है उनके इस व्यवहार को ठीक नहीं समझा और श्राप दे दिया। इस बीच तुरंत वहां पर भगवान पहुंचे बीच बचाव करने के लिए, और उनके सामने बताया जाता है, ये रखा गया कि 7 जन्मों तक या तो नीचे रहो दोनों भक्त के रूप में, 7 जन्मों तक भक्ति करनी पड़ेगी अच्छे व्यक्ति बनकर, या फिर 3 जन्म तक रहो लेकिन असुर बन के रहना पड़ेगा। और भगवान ने कहा मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारा उद्धार करने के लिए, क्योंकि जय और विजय भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान से ज्यादा समय तक दूर नहीं रहना चाहते थे। 7 जन्म तक कौन चैंटिंग रीडिंग हियरिंग करेगा, उनको ऐसा लगा, तो बेटर है कि कौन से जन्म कर लें, 3-3 वाला ठीक है, तो 3 दिनों बाद जल्दी आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, 3 दिन वाला स्वीकार कर लिया। तीन लाइफ का पैकेज मिला हमको, और उस पैकेज के बाद वो तुरंत जो है नीचे उतर आए। सबसे पहला जन्म उनका हुआ हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। ये दोनों अपने टाइम के बहुत ही महान जो है असुर हुए। महान के सेंस में कि महान इसलिए थे क्योंकि भगवान के भक्त हैं, असुर तो थे ही वो। और उन्होंने जो है पूरा का पूरा ब्रह्मांड सर पे उठा रखा था, मतलब उस तरह नहीं, पाप के द्वारा और देवताओं ब्राह्मणों को तंग करके। तो भगवान ने जो है वरहा रूप में हिरणाक्ष का और नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। फिर यही दोनों दोबारा आए, जो हिरणाक्ष थे और कुंभकर्ण थे, मतलब इस तरह बताया जाता है, वो यही मैं सॉरी कुंभकर्ण के रूप में आए और रावण के रूप में आए ये दोनों भाई। और फिर इनका फिर से उद्धार किया गया भगवान राम के द्वारा। और अब ये किस रूप में आए कृष्ण लीला में, दंत वक्र और शिशुपाल के रूप में। और भगवान के रिलेटिव ही थे ये, वसुदेव की बहन के पुत्र। और जैसे ये शिशुपाल जैसे प्रकट हुए तो इनकी हमारी सबकी दो आंखें होती हैं, इनकी तीन आंखें थी। हमारे दो हाथ होते, इनके चार हाथ थे। घर वालों को लगा ये तो बड़ा है ना, तो कई बार मन करता है ऐसे भी इसको कहीं छोड़ आओ। लेकिन जब ऐसा सोचा ही था तभी जो है भविष्यवाणी हुई कि नहीं नहीं भैया ऐसा मत करो, कोई ऐसा है ये अपने आप चला जाएगा, डोंट वरी। और कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो उसको अपनी गोद में रख के इनकी सब चीजें हटा देगा, तो वही इसके मृत्यु का कारण भी बनेगा। तो भगवान कृष्ण जब एक बार आए तो उन्होंने शिशुपाल को गोदी में रखा, एक बार बिठाया और तब उनकी आंख और चारों दोनों हाथ हटा दिए। और यही भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि शिशुपाल थे बचपन से, कहते हैं पैदा होने के बाद से जो है उनके वो रहे क्या विरोधी रहे, तो बचपन से हम का खागा सिखाते हैं बच्चों को, श्लोक बोलना सिखाते हैं, बचपन से गालियां दी थी उन्होंने, वो खाली भगवान को देते थे, मतलब तो जितनी प्रकार की गालियां हो सकती हैं सब देते थे। और इनकी ना शादी होने वाली थी उनसे, किनसे, रुक्मिणी से। हाँ, उनके ब्रदर को पसंद था, कहते चलो ठीक में बात कराता हूँ, हो जाएगा चलो। लेकिन क्या हुआ, भगवान कृष्ण पहुंच गए, क्योंकि रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, ये पूरा प्रसंग आप जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेके चले गए और तब से जो है उनको तो और गुस्सा चढ़ गया कि इसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, खूब गालियां देना शुरू करी। फिर रात सुई यज्ञ जब युधिष्ठिर ने किया तो उसमें सबको बुलाया, तो इनको भी बुलाया था, तो ये पूरी तैयारी के साथ ही आए थे कि वहां ये भी आएगा और मैं फिर युद्ध करूंगा, सब कुछ बिठा बिठो लिया था। तो राजसूय युग में सब कुछ यज्ञ इत्यादि हुआ, तो यज्ञ का जो आश्रय थे जो सब कुछ था आखिरी में भगवान श्री कृष्ण को दिया गया पूरा का पूरा, उसको क्या कहते हैं लाभ जो होता है। इस बात से शिशुपाल को और गुस्सा चढ़ा और इसने भरी सभा में ही गालियां इत्यादि देना शुरू कर दी। तो इस प्रकार फिर भगवान ने भी कहा ठीक है बहुत हो गया, क्योंकि माता को उनके ना वो दिया था, वादा भी किया था कि जब तक 100 गलतियां नहीं करेगा तब तक मैं छोड़ दूंगा, मतलब जब जब मैं मारना चाहूंगा तो 100 बार छोड़ दूंगा इसको, मारने वाली गलती 100 बार छोड़ दूंगा एकदम। तो उसके बाद अगर कभी होगा तो भगवान गिनते रहे, उसका टाइम सारा पूरा हो गया तो फिर उसका वध किया भगवान। तो वो भी जो है भगवान के शरीर में प्रवेश किया। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में वर्णन मिलता है कि शिशुपाल, दंतवक्र, अरिष्टासुर, कितने प्रकार के असुर थे, ये जितने भी लोग मरे इन सब ने भगवान के प्रवेश में, कई भगवान के ही शरीर में प्रवेश किया। रूपा जी तात्पर्य में एक बात लिखते हैं कि दो तरह से होता है कि कई बार तो लोग जब मरते हैं भगवान के हाथों या उनके विस्तारों के हाथ या उनके भक्तों के हाथ, उनके रिप्रेजेंटेटिव के हाथों अगर कोई मरता है तो या तो वो वैकुंठ प्राप्त करता है या फिर सायुज्य मुक्ति अर्थात भगवान के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति उसमें प्रवेश कर जाता है। तो बताते हैं कि जो व्यक्ति मरते समय भगवान की भगवत्ता को जानकर मरता है तो वो तो वैकुंठ प्राप्त करता है, कृपा जी कह रहे हैं। और जो केवल भगवान को मानता ठीक है बड़ा पावरफुल था इसलिए मार रहे हैं मुझे तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। पहले स्कंद के 9वें अध्याय में भी चर्चा मिलती है कि किस प्रकार जब युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र का, तो उस युद्ध में भी जितने भी लोगों ने भगवान का दर्शन किया वहां पे या भगवान के हाथों मरे अर्थात भगवान को देखते हुए, अर्जुन के तीरों से उनका पहले प्यूरिफिकेशन हो रहा था और भगवान के प्रेजेंस में क्योंकि शरीर का त्याग कर रहे थे इसलिए सबको मुक्ति प्राप्त हुई। अब ये मुक्ति 5 प्रकार की होती है, सायुज्य, सामिप्य, सालोक्य, सारूप्य और साष्टी। सायुज्य मुक्ति का मतलब है जो लोग भगवान के शरीर से निकलने हुए वाली दिव्य तेज के अंदर एंटर कर जाते हैं प्रकाश में। सामीप्य मतलब भगवान के करीब रहना अर्थात वैकुंठ इत्यादि में। सारूप्य मतलब भगवान की ही तरह रूप हो जाता है उनका, 4 भुजाएं जैसे जय और विजय की थी। सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य भगवान के ही तरह लोक मिल जाता है जैसे ध्रुव को मिला। और साष्टी मतलब जो कि भगवान की तरह ही ऑपुलेंस में रहते हैं। तो इस प्रकार 5 प्रकार के मुक्ति में से हर भक्त को कुछ ना कोई मुक्ति प्राप्त होती है डिवोशनल सर्विस करने के बाद। लेकिन भक्त लोग इन 5 मुक्ति में कोई भी मुक्ति नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? कि हम लोग भगवान की प्रेममयी सेवा में लगे रहें, चाहे यहां रहें, चाहे नरक में रहें, चाहे स्वर्ग में रहें, चाहे आध्यात्मिक जगत में रहें, भगवान जो चाहे वैसा करें। कई बार होता है ना कि कई बार भक्त सेवा करना चाहता है भगवान की, या कोई डिसाइपल गुरु की सेवा करना चाहता है ना। तो सेवा का हक उस व्यक्ति को है किस सेंस में, अपने हिसाब से करने की, जो व्यक्ति का चित गुरु से एक है या टीचर से एक है या भगवान से एक है, जो भगवान के भाव को समझता है वो इंडिपेंडेंट वे में भगवान की सेवा कर सकता है, क्योंकि वो जानता है भगवान का हृदय क्या कह रहा है। जब तक हम उस प्लेटफॉर्म पर नहीं है कि भगवान के हृदय को ना समझ लें, ना जान लें गुरु की इच्छाओं को, तब तक हमें गुरु के आदेश अनुसार कार्य करना चाहिए, भगवान के आदेश अनुसार कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार जो भक्त हैं वो किसी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं हम भगवान की प्रेममय सेवा में लगे रहें। प्रेममय सेवा का मतलब क्या है? भगवान के नामों का जप, कीर्तन, प्रचार कार्य, और जिससे भगवान प्रसन्न हो, जो गुरु हमें देते हैं। लेकिन फिर भी अगर भगवान चाहें तो अपने भक्तों को इन 5 मुक्ति में से कोई ना कोई मुक्ति दे देते हैं। सायुज्य नहीं देते भक्त, ना भक्त पसंद करते हैं सायुज्य मुक्ति, लीन होने वाली नहीं पसंद करते भक्त। और इसके अलावा भगवान कभी सामीप्य दे देते हैं, वैकुंठ में सारूप्य भी दे देते हैं, तो इस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो यहां पर शिशुपाल को भी जो है, जिसने जीवन भर भगवान को गालियां दी, तो लोग कह रहे थे कि ये बचपन से लेकर कितनी गालियां देगा, ये इतनी गालियां दे दी। कोई एक देता है तो उसको उसी टाइम पनिशमेंट मिलती है, कोई एक बुरा काम करता तो पनिशमेंट मिल जाती है, इसको क्यों नहीं मिलती पनिशमेंट, इसकी जिह्वा में क्यों नहीं रोग हुआ, ये क्यों नहीं कुष्ठ रोगी हो गया। तो कई बार अभक्त लोग इससे इंस्पिरेशन लेते हैं कि देखो इसका तो कुछ नहीं हो रहा इतने पाप करने पर, तो चलो हम भी कर लेते हैं, जब इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा तो हमारा भी नहीं बिगड़ेगा। हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट अलग है, उसके कर्मों के आधार पर उसमें पड़ी हुई राशि अलग है, सबके सेम नहीं है। तो उसी प्रकार भगवान भी हर व्यक्ति के साथ उसके द्वारा किए गए कर्म, पुण्य और भक्ति के अनुसार रेसिप्रोकेट करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रबदन्ते तांस तथैव भजामि हम, कि जो व्यक्ति, जो भक्त जिस मात्रा में मेरी शरण में आता है या मेरा भजन करता है, उसी मात्रा में, उसी के हिसाब से मैं भी उसके साथ आदान प्रदान करता हूं, ये भगवान का नियम है। और एक बार लेक्चर में बताया भी गया था कि भगवान ऐसे ही नहीं किसी पे कुछ भी कर देते, जैसे कि यहां पर पार्शियलिटी लग रही है कि इन दोनों के साथ अच्छा कर दिया गया, ऐसे दंत वक्र भी थे उनको, वो भी जैसे भगवान की निंदा करते थे और भगवान ने उसका भी वध किया, उसका भी जो है आत्मा जो है भगवान के शरीर में मर्ज हो गई। तो लोगों को देखने में लग सकता है इतने बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों हुआ, इतने बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, या कभी बोलते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो केवल हम लोग एक ही गति को ना देखें हर व्यक्ति के साथ, क्योंकि उसका अकाउंट अलग है, उसके साथ भगवान का आदान प्रदान अलग रहने वाला है। और इस दृष्टि से कि उनके साथ इतना बुरा करने के बाद भी अच्छा हुआ तो चलो हम भी कर लेते हैं बुरा, नहीं नहीं, हमें नहीं पता कि पूर्व जन्म में क्या कथा रही होगी, कोई थोड़ी जानता है, या वो लोग थोड़ी जानते थे कि ये दंत वक्र शिशुपाल जय और विजय हैं, इसलिए प्रश्न किया जा रहा है ना हम लोगों की जिज्ञासा के लिए, समाधान के लिए। इसी तरह कई बार भगवान, क्योंकि जैसे जितने भी हम प्रसंग देखें जब जब भगवान ने किसी भक्त के ऊपर कृपा की है या उसको मुक्ति प्रदान की है, तो ज्यादातर क्या देखा जाता है, जैसे ग्राह था जो जिसने गजेंद्र के पैर को पकड़ा हुआ था, कितने लंबे समय तक युद्ध चला और अचानक गजेंद्र ने एक फूल लेकर भगवान की कुछ प्रार्थनाएं करी और तुरंत भगवान वैकुंठ से अपने गरुड़ जी के ऊपर बैठकर उस गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आ गए और ग्राह को जो है तुरंत सुदर्शन से मार डाला। अब देखने में तो लगता है कि एक हाथी के लिए आ गए भगवान, लेकिन पता चलता है क्या कि पिछले जन्म में गजेंद्र जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भक्ति पूरी नहीं हुई या कुछ चीज रह गई थी उसके कारण इस जन्म में उनके साथ ये हुआ। या और प्रसंगों में भी देखें, इस प्रसंग में देखें या रावण के प्रसंग में देखें कि पिछले जन्म का पता चलता है। इसी तरह जड़ भरत के केस में पता चलता है कि जब उन्होंने शरीर का त्याग करा एक हिरण से आसक्त होकर, क्योंकि भक्ति एक स्तर पर थी उनकी, इसलिए हिरण का शरीर प्राप्त होने के बाद भी पूर्व चेतना बनी रही, इसलिए ऋषि मुनियों के आश्रम में हिरण बनकर भी कथा सुनते थे। और हिरण का शरीर त्याग करने के बाद एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया और फिर वहां पर भी आत्म साक्षात्कार की अवस्था पर थे, इसलिए उनको भी उसके बाद भी उनकी अच्छी गति हुई। तो पता चलता है किस प्रकार ऐसे द्रौपदी ने जब उसका चीरहरण हुआ तो भगवान ने कितना साड़ी का जो है सप्लाई किया, क्योंकि कई बार द्रौपदी ने भी भगवान की चोट लगने पर हाथ पर अपनी साड़ी फाड़ कर जो है उनकी रक्षा करी थी। फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने नहीं गई उस समय वो, है ना, एम्बुलेंस नहीं बुलाया, डॉक्टर को नहीं बुलवाया, किसी दूसरे का कपड़ा फाड़ कर नहीं लगाया, घर में पूरा पुराना कपड़ा नहीं ढूंढा, क्या फाड़ा, अपनी साड़ी फाड़ कर तुरंत भगवान की सेवा की। तो भाव ग्राही जनार्दन, भगवान भाव देखते हैं कि भैया इसकी चेतना क्या थी और इसके अंदर कितना लौल्य था मेरी सेवा करने के लिए। लौल्य मतलब ग्रीड, इंटेंस ग्रीड भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान का दर्शन हर कोई करता है ना, हम सब लोग दर्शन करते हैं, लेकिन इन सब दर्शन करने वालों में भी अलग अलग कैटेगरी और लेवल है। कई लोग इसलिए आए क्योंकि रूटीन एक्टिविटी है, हफ्ते में एक बार तो जाते जाते हैं जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज दर्शन करते हैं, हमारा रूटीन है जी। कुछ है कुछ भगवान के लिए अर्पण करने के लिए लेकर आते हैं, आज भगवान को मैं अर्पित करूंगा, तो भाव थोड़ा ऊंचा है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं आज भगवान का दर्शन करूं तो ये सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं गाऊं भगवान, आज भगवान कैसे लग रहे होंगे। और कुछ आते हैं कि बस आज तुम्हें साक्षात भगवान का दर्शन करने जा रहा, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि भगवान मुझे बुला रहे हैं आज मंदिर ताकि मैं उनका दर्शन कर सकूं। हर एक व्यक्ति की चेतना अलग, और हो सकता है कोई आश्रम में रहता हो और ऊपर से नीचे उतरने में उसकी फीलिंग कुछ अलग हो या बहुत अच्छी हो। तो भगवान हर व्यक्ति के साथ उनके भाव के द्वारा, उनके भाव की ग्रीड को देखकर, इंटेंस ग्रीड को देखकर रेसिप्रोकेट करते हैं। नारद मुनि जी ने जब भगवान को हृदय में देखा, जब तपस्या करने गए थे, तो देखने के बाद तुरंत भगवान ओझल हो गए ध्यान से, और फिर रोने लगे, पुछताने लगे, फिर बुलाने लगे, तो भगवान ने कहा अब नहीं आऊंगा, अभी तो खत्म, इतना ही दिखाना था। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें शुद्ध होने में और समय लगेगा। नारद जी का पुराना जन्म की बात कर रहे हैं, पिछले जन्म की, जब वो दासी के पुत्र थे। कहा कि तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ मटेरियल टेंस, कुछ कंडीशनिंग रह गई है, उसको पूरी तरह समाप्त करो। तो क्या था वो? पता चला एक जगह पढ़ करके, वो सतोगुण से आ सकते, जैसे वादियों से, सुंदर पर्वतों, झरनों से, है ना, तो उस तरह का कुछ अट्रैक्शन था। तो भगवान चाहते वो अट्रैक्शन में किसके प्रति हो? मेरे प्रति हो। तो नाराज जी को भी जो है रुकना पड़ा इसकी वजह से, और फिर बाद में उनको नारद की पोस्ट मिली, है ना, ऐसा वीजा मिल गया जो किसी भी ब्रह्मांड में, वैकुंठ में, कहीं पे भी जा सकते हैं, पाताल लोक में, नरक लोक में, हर एक जगह से कन्वर्सेशन करके आते हैं, किसी को भी मिल जाए कहीं भी, ट्रेवलिंग प्रीचर। तो हम बता रहे थे कि जोर से, हाँ, अलग अलग भाव के कारण, अलग अलग। तो जो व्यक्ति जितना भाव डालेगा, कहते ना जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा हो, तो जिसका जितना भाव है, और भाव डेवलप कैसे होता है, जब तक भगवान के व्यक्ति बारे में सुनेगा नहीं, खुद अध्ययन नहीं करेगा, तब तक भाव डेवलप नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति को नियमित रूप से बताया गया नित्यम भागवत सेवा, इसलिए नित्य करने का प्रयास करना चाहिए। रोज नहीं आ सकते तो इंटरनेट में दर्शन कर सकते हैं, या इंटरनेट में कथा सुन सकते हैं, उसका भी टाइम नहीं है, नहीं आता तो श्रीमद् भागवतम का घर में अध्ययन कर सकते हैं कुछ देर। तो इस प्रकार हम लोग अपनी एडवांसमेंट भक्ति में कर सकते हैं। इस तरह अलग अलग लोगों के साथ भगवान का अलग अलग, उनकी योग्यता को देखकर भगवान ने आज तक उनके साथ किया। लेकिन फिर भी जो बता रहे हैं भगवान की, ये था माम प्रबंधनते तांस्तते व बजामे हम, उसी मात्रा में करता हूं, ये कुछ फिक्स नहीं हो गया कि जब हम दो बार ऐसा करेंगे तो तीसरी बार भगवान कुछ ऐसा करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग ऐसा फिक्स कर देंगे कि ऐसा करने पर ही भगवान ऐसा करते हैं, तो भगवान का जो स्वराट, पूर्ण स्वतंत्र होने का गुण है, वो ढक जाता है, वो छुप जाता है। इसलिए एक गुण है भगवान का अहेतु की कृपा करने का, कॉजलेस मर्सी जिसे बोलते हैं। तो अगर भगवान हर चीज में कॉज ही देखेंगे तो भगवान तो फिर जो बात कह रहे हैं कि ये था माप प्रपदंते तांसते, तो वैसा कर ही रहे हैं, लेकिन कई प्रसंगों में फिर भगवान भक्ति, या जो व्यक्ति है, जो असुर है, या जो भी व्यक्ति है, उसकी क्वालिटी भी नहीं देखते कुछ, और सीधा उद्धार कर देते। तो अपना कॉजलेस मर्सी का गुण प्रकट करते हैं सामने। हो सकता है कि पिछले जन्मों में भी हम नहीं रहे कि जय विजय की तरह, है ना जी, नहीं हमने कुछ किया उल्टा, बड़ा कोई कर्म नहीं किया ऐसा, नहीं दान पुण्य किया खूब, इतने इतने जन्मों में करने के बाद तब जाके भगवान उसको उद्धार करते हैं, और हम नहीं है इस तरह के शायद। तो भगवान की कॉजलेस मर्सी क्या है? जैसे युद्ध स्तर में, युद्ध स्थल में जिसने भी भगवान का दर्शन किया, उन सबको जो है मोक्ष प्रदान किया, कईयों को वैकुंठ दिया, कईयों को सहज मुक्ति दी। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो हर व्यक्ति को बिना किसी हेतु के ही कृष्ण प्रेम देना शुरू कर दिया। जो उनको देखता था, जो उनके साथ नाम लेता था, जो हरि हरि बोलता था, सबको कृष्ण प्रेम दे दिया। पशुओं की क्या योग्यता थी, उनका क्या पुनर्जन्म था, जो जब झारखंड के जंगलों में गए महाप्रभु, शेर, चीता, जो जो भी जानवर होते हैं, सब नाच रहे हैं भगवान का स्पर्श पाकर, हरि हरि बोल रहे हैं, महामंत्र बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, उनकी क्या योग्यता थी? लेकिन भगवान का जो अहेतु की कृपा करने का, जैसे बोलते तुरूप का पत्ता, वो भगवान ने आखिरी में निकालकर उनको भी उद्धार किया। तपस्या करने वाले तो कई लोग थे, ध्रुव महाराज ने भी की, हिरण्यकश्यपु ने भी कितनी तपस्या की, लेकिन भगवान की इच्छा है मैं कब प्रकट हूं, कहीं उसे हजार साल करवाते हैं, कहीं छह महीने प्रकट हो जाते हैं, खटवांग महाराज से तो पौने घंटे में प्रसन्न हो गए। बात समझ रहे हैं? किसी का एक दिन, किसी कुछ, ये भगवान के ऊपर है कि भाई मैं कब खुश हूं। कहीं उसे लगे ब्रह्मा जी कमल के फूल से निकले, प्रकट हुए, पहले तो उनका कहा तुम थोड़े चक्कर लगाओ। क्या चक्कर लगाया? ऊपर से लेकर कमल की नाल पकड़ के चलते रहे, चलते रहे। कमल की नाल छोटी थोड़ी, इतनी सी थोड़ी थी वो कमल की नाल, गर्भ दक्ष विष्णु वहां पर गर्भ से निकल रही है, और पता नहीं कितने ऊंचाई, तो हम नहीं बता सकते, खैर लाखों किलोमीटर ऊपर की बात कर रहे हैं, वो चक्कर काट रहे, पकड़ कर नीचे आ रहे हैं उसको ढूंढने के लिए कि कौन है नीचे, कहां से आ रहा है ये, जड़ तो मिले कहीं, नहीं मिला तो फिर वापस चले गए ऊपर, फिर दोबारा नीचे आए, कि शायद कई बार होता ना कि थोड़ा सा रह गया था, अंधेरा था, दिख तो रहा ही नहीं था, तो कहते चलो एक चक्कर और लगा लो कि थोड़ा और नीचे जाऊंगा, तो थोड़ा और नीचे गए, फिर पैर नहीं लगा जमीन पे, फिर ऊपर आ गए वापस, कहते अब नहीं जाऊंगा, फिर लगा कि शायद अंधेरा था तो दिखा नहीं होगा, शायद थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि एक बार ऐसे ही होता है, एक व्यक्ति जो है पहाड़ों में एवरेस्ट पर चढ़ रहा होता है, कूद फांद कर रस्सियां रस्सियां बांधी होती हैं साथ में, पहुंच नहीं पाता, तूफानी बर्फीली हवा से गिर जाता है नीचे, और लटक पटक कर जो है कहीं अटक जाता है, भगवान को पुकारता है, भगवान कहां फंस गया मैं, है ना, बचाओ बचाओ, एक आवाज आती है, रस्सी छोड़ दो बेटा, मरवाओगे, रस्सी छोड़ दो, इसी के बल तो अटका हुआ। सुबह देखते हैं कि वो 6 इंच ऊपर रस्सी पे लटक के मर गया, नीचे जमीन थी। तो उसने भगवान की बात नहीं मानी, तो कहने का मतलब क्या है, फिर ब्रह्मा जी तीसरा चक्कर भी लगाया, फिर तीनों बार कुछ नहीं हुआ, तो कहते हैं ठीक है भगवान का, तो कईयों बार तो भगवान खूब चक्कर लगवाते हैं, अच्छे तरह शुक्रवार, और फिर तप करवाया उनसे, खूब तप करवाया, 1000 साल तक तप करवाया ब्रह्मा जी से, तब जाके उनको ज्ञान दिया और फिर उन्हें सृष्टि करी। ध्रुव महाराज ने, ये जो हमारे हिरण्यकश्यपु थे, इन्होंने भी काफी लंबी अंगूठे पे खड़ा होकर तपस्या करी, 100 वर्ष या उससे अधिक, और उसके बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए दिया। हमारे ध्रुव महाराज जो थे ये भी गए 6 महीने तक इन्होंने तपस्या की थी, और तपस्या के बाद जब भगवान सामने प्रकट हुए तो प्रकट हो भी सकते थे और नहीं भी हो सकते थे, क्योंकि उनकी इच्छा थी अपने पूर्वजों से, दादा परदादा से भी ऊंचा पद प्राप्त करने की, तो वैसे ही दे देते, प्रकट होने की क्या जरूरत थी, आवाज कर देते, आकाशवाणी से बोल देते, ऐसा थोड़ी कि ट्रांसमीटर चल नहीं रहता, ऐसा कुछ है उनका, लेकिन भगवान प्रकट हुए सामने। प्रकट होने के बाद इतना ही नहीं, अहेतु की लिखा है, अहेतु की कृपा करने के लिए भगवान ने अपना शंख पहले उनके माथे पे छू दिया, नहीं तो अगर शंख नहीं छूते तो शायद कुछ और मांग लेते, कुछ और भी और मांग सकते, लेकिन शंख छुआ तो ज्ञान में आ गए पूरी तरह, पछताने लगे कि मैं क्यों गलती से फालतू की तपस्या कर रहा था एक पोस्ट के लिए, तो यह अहेतु की कृपा है। तो इस तरह भगवान का जो गुण है स्वराट का, स्वतंत्र इच्छा करने का और उसको पूरा करने का, कई बार सारे नियमों को त्याग कर भगवान आगे बढ़ जाते हैं एक भक्त के लिए। तो इस प्रकार, जैसे इसमें हम लोग एक बार और प्रसंग आता है जिसमें कि कहते हैं योग क्षेम व्याह में, हम भगवान कहते हैं मैं स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, तो करते हैं भगवान, लेकिन ध्यान रहे कि केवल हम लोगों को भगवान की अहेतु की कृपा के चक्कर में बैठा नहीं रहना चाहिए। ठीक है पापी रहो, क्या दिक्कत है, जैसे हो रहा चलने दो, अपने आप ही कभी ना कभी भगवान कर देंगे, नहीं, हम लोगों को जिस प्रकार दंत वक्र और शिशुपाल थे, भगवान से खूब ईर्ष्या और द्वेष करते थे, लेकिन हर समय क्योंकि भगवान का स्मरण करते थे ईर्ष्यावश ही, तो भी भगवान ने उनका उद्धार किया। लेकिन प्रभुपाद जी हर परिप्रेक्ष्य में ये लिख रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम फेवरेबल ढंग से ही भगवान की भक्ति करें, असुरों के साथ, पापियों के साथ भी जब भगवान उद्धार कर देते हैं उनका, तो जो लोग भगवान का नाम जप रहे हैं, जो भगवान का मतलब भजन कर रहे हैं, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों का निग्रह अर्थात उनका उनको इंद्र तृप्ति नहीं कर रहे, सेंस एंजॉयमेंट्स को त्याग दिया जिन्होंने, किस लिए? ताकि भगवान को प्रसन्न कर सके। एक जीवन, बस एक जीवन की तपस्या से हम लोग जन्मों जन्मों की छोटी मोटी तपस्या से बच सकते हैं। क्या है वो तपस्या? कि अगर एक जन्म में हम लोगों ने अपनी जीभा पर, अपने नेत्रों पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल कर उसे कृष्ण भावना भीत में भावित होने के लिए संलग्न कर लिया, उसको लगा दिया उसमें, और उसके बदले में छोड़ा क्या, वो चीजें छोड़ दी जिन चीजों का भोग कर हम लोग और इस भौतिक जगत के जन्म बुढ़ापा बीमारी मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं, या जो भौतिक जगत की बेड़ियां हैं हमें और ज्यादा टाइटली पकड़ लेती हैं, हमें निकलने नहीं देती, केवल क्या इंद्र तृप्ति का, उन भोगों का त्याग अगर कोई कर लेता है एक जीवन में, एक तपस्या कर लेता है खाली, तो उसको फिर दोबारा जन्म नहीं लेना, क्योंकि भगवान के धाम जा सकता है व्यक्ति, और जब दोबारा जन्म नहीं होगा तो फिर जन्मों जन्मों में दोबारा आकर उसको कोई और तपस्या व्रत इत्यादि रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कारण, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर उन इंद्रियों को ऋषिकेन ऋषिकेश अर्थात ऋषिकेश की सेवा में लगाया। जैसे अम्बरीश महाराज का उदाहरण आता है, कानों को भगवान की कथा के कथा को सुनने में, हरि नाम को सुनने में, जिह्वा को भगवान की ग्लोरिफिकेशन करने में, कथा करने में, जप करने में, आंखों को नेत्रों को भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करने में, हाथों को भगवान के मंदिर के मार्जन करने में, सफाई करने में, पैरों को भगवान के मंदिर जाने में, पूरे शरीर को भक्तों की भगवान की सेवा करने में, मन को भगवान के चरण कमलों में, इस प्रकार जिस व्यक्ति ने अपने सारे इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा में लगा दिया तो क्या होता है, तत्परत्वे निर्मलम, तो निर्मल हो जाती है इंद्रियां, शुद्ध हो जाता है मन, और फिर व्यक्ति जिन चीजों का त्याग कर जिन इंद्रियों के भोग को त्यागा है उसने, त्याग करते ही उसको वो सुख मिलता है, वो आनंद मिलता है जो कि इंद्रियों का भोग करके भी नहीं मिलता। त्याग का इतना बड़ा बेनिफिट, आप कभी कुछ भी त्याग कर देखिए, त्याग के साथ तुरंत सुख मिलता है। हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे जो बहुत कंजूस है और थोड़ा दान देने में उसको दिल धड़कता है, हम उसकी बात कर रहे हैं जो पायस लोग हैं, जो समझदार है, जिन्हें मालूम है किसी चीज का भी त्याग करते हैं। अगर किसी कंजूस ने भी त्याग करा है तो देख सकते हैं कि अगर उसने कुछ त्याग करा है तो कुछ समय के बाद उसको रियलाइज होता है, क्योंकि पुण्य हो गया, त्याग करा, कुछ दिया किसी को, दान दिया, तो उसको बेनिफिट मिलता है। और जब व्यक्ति त्याग करता है किसी भी चीज का तो उसको एक अलग सुख की प्राप्ति होती है, दान देकर, है ना, इन सब चीजों से उसको अलग सुख की प्राप्ति होती है। कुछ चीज खाने के लिए पड़ी है सामने, व्यक्ति को मालूम है कि इसको अगर मैं ज्यादा भोग करूंगा तो नुकसान दे सकती है, तो उसे त्याग दे इस विचार को, तो ना खाकर कुछ समय के बाद वो कहता ठीक करा, शुक्र का मैंने नहीं खाया, अच्छा रहा, मैं थोड़ा हेल्दी फील कर रहा हूं, तो पता चलता है, उसको रियलाइज होता है। इसी तरह जब हम लोग इंद्रिय भोग का त्याग करते हैं और इन इंद्रियों को फिर आध्यात्मिक, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चाहिए इंद्रियों को भी, मन को भी कुछ ना कुछ सब्जेक्ट चाहिए विचार करने के लिए, भोग के लिए, तो फिर हम लोग क्या देते हैं इसको, आध्यात्मिक डाइट, और उससे तो फिर इंद्रियां जो है क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो इस तरह जब हम लोग इस प्रकार के मार्ग को अपनाएंगे और अपने को योग्य बनाएंगे कि भगवान हमारी तरफ देखें, तो क्या होगा कि जिस प्रकार दंत वक्र शिशुपाल को गति प्राप्त हुई है भगवान के हाथों से मरने पर, हमें हो सकता है कि भगवान स्वयं ना आए मारने के लिए या उद्धार करने के लिए, लेकिन हमारा तो हरि नाम के द्वारा ही, गुरु के ही माध्यम से उद्धार हो जाएगा। ये बहुत ही आसान रास्ता है, फेवरेबल है, जिस तरह हर व्यक्ति समाज में आसानी से जीना चाहता है बिना किसी टेंशन के, तो उसको सरकार के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करना पड़ता है, नियमों को तोड़ने वाले को जेल भेजा जाता है, और जो नियम तोड़ते हैं और जेल नहीं जाते तो उनको कितनी तिकड़मबाजी करनी पड़ती है, यहाँ पैसा खेला वहाँ पैसा खेला, इनको बचा अपने को बचा, कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके बचते। बताया जाता है जिनको यहाँ सजा नहीं मिलती या इधर दे ले दे के बच जाते हैं तो उनके लिए फिर नरकों में सजा होती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अच्छा है कि अगर किसी ने कुछ गलत काम किया उसको यही सजा मिल जाए, खून किया तो फांसी मिल जाए तो अच्छी बात है, बच गया तो नरकों में जाना पड़ेगा, पता नहीं कितना सजा लेना पड़ेगा उसके बाद आना पड़ेगा। लेकिन भक्तों से अगर कोई पाप हो जाए तो क्या करना चाहिए, पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देना चाहिए। अगर पाप हो जाए तो तुरंत भगवान से माफी मांगनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, हरि नाम बढ़ा देना चाहिए ताकि हमारी वो पाप करने की प्रवृत्ति भी जो है बदल जाए। और बदली है लोगों की, हम जानते हैं, देख रहे हैं पूरे विश्व भर में, जो लोग सदैव पाप करते थे आज वो केवल भक्ति करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस प्रसंग के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि भगवान पार्शल है भी पार्शल नहीं भी। भगवान कहते हैं कि मैं अवतार लेता हूं भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए, तो दोनों में दोनों का उद्धार है। और फिर रेसिप्रोकेट करते हैं हमारी योग्यता को देखकर, हमारे भाव को देखकर, हमारे द्वारा की गई भक्ति के अनुसार। और फिर कई बारी भगवान अहेतु की कृपा भी करते हैं भक्तों पर, और वो ये है कि जैसे हम सब लोग, हमारे अंदर कोई योग्यता थोड़ी थी, हो सकता हम ब्राह्मण कुल में भी पैदा ना हुए हों, लेकिन उसके बावजूद भी हरि नाम की शरण में है, भगवान की शरण में है, गुरु की शरण में है, तो ये एक भगवान की अहेतु की ही कृपा है। तो बता रहे हैं कि भक्त और भगवान दोनों ही अहेतु की कृपा करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये अहेतु की कृपा पूरे विश्व पर की, मंदिरों का निर्माण कर और मल्लेच्छर यवनों को दीक्षित कर उनके जीवन को सार्थक किया, तो यह अहेतु की कृपा है। कौन जानता था कि भारत से एक भक्त विश्व के दूसरे कोने में पहुंचकर उन हिप्पीज और यवनों और मलेच्छों के बीच में जाकर हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे और वो शुद्ध बन जाएंगे। तो जब उन्होंने भी ग्रंथ पढ़े तो उनको लगा कि नहीं नहीं शायद हमारी भी पुरानी सुकृतियां हो सकती हैं। एक दिन पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद क्या हम भक्ति जो कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि हमारी भी पुरानी सुकृतियां रही होंगी। प्रभुपाद ने कहा नहीं, तुम्हारी सुकृतियां मैंने दी हैं, मैंने बनाई हैं तुम्हारी सुकृतियां, या तुम्हें इस योग्य पे लाया हूं कि तुम भक्ति कर सको। यह है भक्तों के द्वारा अहेतु की कृपा है कि नहीं। तो इस प्रकार भगवान के भक्त ऐसे स्थानों का निर्माण करते हैं, ऐसे भक्तों का निर्माण करते हैं जो भक्तों को जाकर अभक्तों को जाकर प्रचार करते हैं। सड़कों पे जा रहे हैं लोग, गाड़ी चला रहे हैं, अचानक दरवाजा नॉक किया जाता है ना, विंडो, और अचानक एक भक्त का दर्शन होता है। भक्त का दर्शन करने से उसके पाप खत्म, तिलक लगाए, कंठी पहनी है, कपड़ों में है वैष्णव, तुरंत शुभ ही शुभ हो जाता है। फिर वो कहता है भाई साहब ये गीता भी लीजिए, क्योंकि आपने वैसे पढ़नी है नहीं, आपके पास टाइम तो है नहीं, हाँ जी मरने तक की फुर्सत नहीं है, तो हाँ ठीक है ये लीजिए भगवत गीता लीजिए। तो भगवत गीता सुनता है, भगवान का चित्र देखता है, हाथ में पकड़ता है, चाहे मना करे चाहे ले ले, दोनों में फायदा है, हाथ तो लगा लिया उसने। और अगर ले ले तो बताया जाता है गीता और भागवत महात्म्य में कि अगर भगवान के मुख से निकला हुआ वाणी का एक श्लोक या आधा श्लोक भी घर में कोई लिख कर रख दे तो वैसे उसके घर में चीजें शुभ होने लगती हैं। लोगों के घर तो ग्रंथ के ग्रंथ पड़े, तो इस तरह उद्धार होता है। तो भक्त लोग सड़कों पर भी जो है भगवान की अहेतु की कृपा बांट रहे हैं, कॉजलेस मर्सी, लोगों को हाथ लगवा रहे हैं। बताया जाता है कि अगर ग्रंथ पे हाथ लगा लिया एक बार तो व्यक्ति का मनुष्य जन्म पक्का है, वैसे तो हमेशा तलवार लटकी रहती है कहां कौन सी में जाएंगे, ऐसा भी बताया गया। आज उसने हाथ लगाया है अगले जन्म में खोलेगा, लेकिन हमें ऐसी योजनाओं में नहीं फंसना चाहिए। अगर हमारे हाथ में आ गई तो तुरंत खोल के पढ़ना चाहिए। आप सोचो जी इस बार हाथ में है, अगली बार खोल लेंगे, उसके बाद पहला पेज खोलेंगे, फिर ऐसा नहीं चले, ठीक है ना। अगर ऐसा करेंगे तो भगवान समझ जाएंगे गड़बड़ व्यक्ति है, इसको लंबा चक्कर लगवा के लाते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो पूछिए। हाँ जी
अंकुर जी, ये मेरे दो थी प्रश्न जी के। पहला था कि इस परपट में लिखा है प्रभुपाद ने कि इन दोनों को सायुज्य मुक्ति मिल रही थी, तो मेरे और बोलते हैं कि बाद में सालोक्य और सामिप्य मिले, तो मैं सोच रहा था कि अभी तक तो असुर थे ये लोग, तो बाद में जब जगाई मधाई अपन के आए थे तब वो लोग भक्त बने, उसके बाद उनको ये मुक्ति मिली थी या उसके पहले ही मिली थी? और सायुज्य मुक्ति में जो गए थे स्पेशल डिवोटीज थे भगवान के, तो इनके साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट था कंपेयर टू ज्ञानीज जो जाके सायुज्य मुक्ति में?
ठीक है, देखिए जैसे तीन जन्म उनको लेने थे, तो पहले जन्म में जब उनका उद्धार किया तो वैकुंठ तो बुलाएंगे नहीं कि आज तब तक दोबारा थोड़ी जॉब कर लो उसके बाद नेक्स्ट में आएगा, ऐसा नहीं था, क्योंकि पनिशमेंट मिली तो नीचे रहना पड़ेगा, तो नीचे रहने के लिए उनका स्थान तो है नहीं जब तक कि दूसरा जन्म ना हो, तो सायुज्य मुक्ति दी। सायुज्य मुक्ति में अगर रुके तो ऐसे स्पेशल सोल्स, किसी साधारण सोल्स की तरह तो नहीं है, एक ज्ञानी की तरह तो नहीं है, तो इनका स्टेटस वहाँ पर भी हाई रहा हो ये माना जाता है। दूसरा प्रश्न क्या था?
जगाई मदाई बनने के बाद?
हाँ, तो भगवान की लीलाओं में भगवान अपने ही पार्षदों का इस्तेमाल करते हैं, तो जय विजय को अगर उनको लगा कि ये दोनों ठीक हैं इनको कर सकते हैं, तो जगाई मदाई के रूप में भी किया गौरांग महाप्रभु की लीला में। तो ऐसा नहीं है कि जब गौरांग महाप्रभु की लीला थी जगाई मदाई तब तक वो ऊपर नहीं गए वैकुंठ में, तो इनके बाद ऊपर चले गए, लेकिन भगवान के भक्त अपना विस्तार करते हैं जैसे भगवान विस्तार करते हैं, तो एक ही समय में दो लीलाओं में रह सकते हैं। जैसे कुछ भक्त गौर लीला में भी रहते हैं और कुछ राधा कृष्ण की लीला में भी रहते हैं।
और एक था प्रभु जी, आपने अहेतु की कृपा के बारे में बोल रहे थे, तो मैंने जैसे सुना था प्रभुपाद के इसमें कि एक बार प्रभुपाद से बोलते हैं एक व्यक्ति की अगर ये कृष्ण कॉन्शियसनेस सारा का सारा जगत लेगा तो यहाँ पर कोई रहेगा ही नहीं यूनिवर्स, प्रभुपाद बोलते ऐसा होगा ही नहीं, तो मतलब भक्त चाहकर भी अहेतु की कृपा सब पे नहीं कर सकता भगवान में चाह। तो और आपने बताया था कि जो ध्रुव महाराज हैं या फिर गजेंद्र का एग्जाम्पल दी, वो पिछले जन्म में एक भक्त थे, तो जब तक वो व्यक्ति पूरी तरह शुद्ध ना हो जाए तब तक उस पर वो अहेतु की कृपा नहीं होती, तो चाहे वो पिछले कई जन्मों से आ रहा हो, तो इज इट ओके? ठीक है,
दोनों चीज़ें, भक्त चाहते हैं कि हम सबका उद्धार करें, तो इसमें एक इंडिविजुअल भक्त की भी क्वालिटी है कि उसके हृदय में करुणा है सबके प्रति, और दूसरी तरफ एक असुर चाहता है कि सारे असुर मेरी तरह हो जाएं सारे व्यक्ति, तो असुर अगर चाहेगा कि सारे मेरी तरह हो जाएं तो ऐसा भी नहीं चाहेंगे भगवान, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छे लोग चाहिए, और कुछ ना कुछ अच्छे और भक्त इसलिए चाहिए ताकि सृष्टि चलती रहे सही समय पर सही तरह पर। तो इस तरह अगर भक्त चाहते भी हैं तो इसमें भगवान उसके उसके हृदय को देखते हैं कि इसके अंदर कितनी करुणा है सबके प्रति, और फिर जिस जिसके अंदर जैसी जैसी योग्यता है उसके हिसाब से वो आगे भी बढ़ता है। जैसे कि आप दूसरा प्रश्न पूछ रहे हो जैसे गजेंद्र का हुआ, लेकिन कई जगहों पर भगवान अहेतु की कृपा भी करते हैं, तो वहाँ पर फिर कोई कॉज ही नहीं रहता, तो ये भगवान का जो स्वतंत्रता का गुण है वो इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान के लिए, कई जगहों पर करते हैं कई जगहों पर नहीं करते।
ये अहेतु की कृपा वाले से थोड़ा कन्फ्यूजन आता है कि ये पार्शलिटी नहीं है उस व्यक्ति की तरफ
जिसने मेहनत की और जिसने नहीं की?
नहीं, हाँ इसने कुछ मेहनत नहीं किया, अहेतु की मिल गई गया ये।
हाँ तो मैंने वही बताया, जैसे दंतवक्र और शिशुपाल को देखकर तो कई लोग अचकित रह गए प्रश्न में कह रहे कि भाई इतने पापी थे फिर भी चले गए, बट फिर पीछे देखते हैं कि वो तो भक्त थे। और फिर जिन पर अहेतु की कृपा हो रही है, मैंने बताया ना ये तुरुप का इक्का जैसे बोलते हैं कुछ ऐसे बोलते हैं, मतलब बहुत कम चीज़ यूटिलाइज बहुत कम करते हैं भगवान इस चीज़ को, ये सोचे कि भगवान की अहेतु की कृपा होगी तब तक मैं कुछ ना करूं, तो ये बड़ा मुश्किल है उसके लिए, ऐसा सोच कर भी नहीं रह सकता। और अगर इसी बहाने रहे भी कि ठीक है भगवान की कृपा चलो 10,000 साल बाद भी रहे लेकिन होगी तो सही, अगर ऐसा फेथ कर ले डेवलप तो भी भगवान उद्धार कर देंगे उसको, जैसे मुकुंद का किया था, मुकुंद चैतन्य कह दो उसको, कभी यहाँ आता है तो वैष्णव बन जाता है, मायावादियों के बीच में आता है तो मायावादी बन जाता है, उसका नहीं होगा उद्धार, उसको नहीं करूँगा कृपा। पूछा कि कब तक करेंगे? 10,000 सालों के बाद। वो नाचने लगे, वहाँ 10,000 साल बाद तो हो ही जाएगी, तो वहां नहीं, चलो अभी कर देते तो कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को भगवान की, हम जो जुड़ रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो करेगा नहीं ना, बहुत कम लोग जुड़े हैं, उन लोगों को तो अपने को मंदिर में आना, प्रसाद ग्रहण करना, हरि नाम लेना, दीक्षा हो जाना, इसको ही भगवान के हेतु की कृपा माननी चाहिए, ना कि ये कि सीधा उद्धार होगा। तो क्योंकि भक्त लोग कोई उद्धार नहीं चाहते, मुक्ति नहीं चाहते, हमने बताया ना शुरू में, वो तो ये चाहते हैं कि भगवान की सेवा में लगे रहे। तो उस सेंस में उनके ऊपर तो बहुत बड़ी कृपा है, सहज मुक्ति है, इधर उधर चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ करने को नहीं मिलेगा इस सेंस। और कोई प्रश्न है किसी? इधर देना।
श्रीला प्रभुपाद जी को जगत गुरु क्यों कहा गया है? जगत गुरु श्री कृष्ण जी को कहा गया है, तो इस तरह श्रीला प्रभुपाद जी को जगत गुरु क्यों?
जगत गुरु श्री कृष्ण को भी कहा गया है क्योंकि जगत गुरु है वो। और दूसरी बात, जो भगवान के भक्त होते हैं, और जगत गुरु उस शक्ति के साथ लगता है जिस, जो पूरे जगत के गुरु हैं। तो प्रभुपाद अगर वैसे देखा जाए, उनके एक्सटर्नल क्वालिटीज के बेसिस पर भी देखा जाए, तो उन्होंने पूरे विश्व में शिष्य बनाए, पूरे विश्व में अपने ग्रंथों का प्रचार किया, पूरे विश्व में हर जगह सेंटर खोले, पूरे विश्व के लिए वो ग्रंथ दे गए जिससे कि सब लोग उन ग्रंथों को पढ़कर आध्यात्मिक ज्ञान लेकर भगवान के धाम सकते। तो पुस्तकों के माध्यम से भी वो सबके गुरु हैं, शिक्षा गुरु, और वैसे दीक्षित और मंदिर इत्यादि खोलने की वजह से भी वो सबके गुरु हैं, तो इसलिए जगत गुरु। एक्चुअली ये जगत गुरु वर्ड कई लोग दूसरे लोग भी लगाते हैं, जो किसी छोटी सी कॉलोनी में छोटा सा गुरु है वो भी लगाता है जगत गुरु, ताकि उसको उसको उस वर्ड को जो है यूज करना चाहता है अपने फायदे के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी वास्तव में जगत गुरु हैं, ये तो उनकी क्वालिटीज़ को देख के हम बता सकते हैं, और इसलिए वो जगत गुरु हैं। और भगवान को भी जगत गुरु कहा जाता है क्योंकि पूरे विश्व को शिक्षा तो वही देते हैं, जो ग्रंथ आज हैं वो तो भगवान के द्वारा दिए गए हैं इसलिए, और भगवान के भक्त क्योंकि उन्हीं ग्रंथों को आगे कर रहे हैं इसलिए वो भी जगत गुरु। ऐसे नहीं खाली प्रभुपाद जगत गुरु हैं, इसके अलावा जितने ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन आचार्यों ने लिखे, वो भी जगत गुरु हैं। बेशक की हो सकता है उन्होंने शिक्षा ना दी हो उधर, लेकिन उनके ग्रंथ आज हर जगह पहुंच तो रहे हैं उन्हीं की वाणी के रूप में, और भगवान की वाणी है इसलिए भगवान भी जगत गुरु। और समय हो चुका है, जिसको उठना हो उठ सकते हैं।
हरे कृष्ण।
हाँ जी,
प्रभु जी पूछ रहे थे कि अहत्य की कृपा कि भगवान करते हैं, तो पार्शियलिटी भी है ना, तो बेसिकली देखा जाए तो अहत्य की कृपा तो व्यक्ति के भाव के ऊपर भी डिपेंड होती है, कि अगर हम देखते हैं कि शिशुपाल हो दंत वक्त तो उन पर अहत्य की कृपा हो गई, लेकिन जैसा आपने कहा कि इनके पूर्व कर्म जो है जय विजय है, तो आपस में भगवान और उस व्यक्ति के बीच में क्या टेलीपैथी है हम नहीं जानते, है ना, तो भगवान भी अहत्य की कृपा हर एक पे नहीं करते, क्योंकि उनकी जो अंदर की जो टेलीपैथी है, जो वो भाव भगवान जानते हैं कि इस व्यक्ति का क्या भाव है, ये समर्पण भाव है इसका, इस चाहता है, तो भगवान भी हेतु की कृपा तभी करते हैं। वैसे अगर वैसे है तो स्वतंत्र किसी पर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है व्यक्ति के भाव के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना समर्पित है, तो जो हम प्रयास कर रहे हैं उसके ऊपर भी है कि हम अपने प्रयास नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की कृपा से हम भी प्रयास कर रहे हैं, हमारे भाव के ऊपर भी, व्यक्ति के भाव के ऊपर भी डिपेंड करते हैं,
हमें तो फेवरेबल प्रयास करने ही करना। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर ब्रह्म।